प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
सुध में जनन
जनन जनन
जनन जनन जनन जनन बाजे।
आई श्रोता, इसी स्तुति गीत के साथ ही हम आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको नमस्कार कहते हैं। मित्रवर, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से उत्पत्ति नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने उन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया था जो बाइबल अध्ययन के लिए अति आवश्यक हैं, और मुझे विश्वास है कि अब आप बाइबल अध्ययन के लिए हृदय तथा आत्मा में पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। आज हम अपने मुख्य अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, हम अपना बाइबल अध्ययन बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति के प्रथम अध्याय के प्रथम पद से आरंभ कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगें। हे समस्त बुद्धि के स्रोत, दीनों की सामर्थ, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र वचन के भेदों को समझ सकें तथा आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार और उसको समझते हुए हम अपने अध्ययन को पूर्ण कर सकें। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन की सत्यता को ग्रहण कर सकें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, किसी क्लेश में है, किसी घोर अपराध में फंसा हुआ है या किसी रोग से पीड़ित है, आप उनकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं। आमीन। मित्रवर, उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पद में इस प्रकार से वर्णन है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। आज तक संसार में जितनी भी बातें कही गई हैं, उनमें से सबसे गहन, गंभीर तथा आदरणीय कथन यही है। फिर आधुनिक युग में अनेक लोग इस कथन को चुनौती दे सकते हैं, परंतु यदि हम इस पद पर पूर्ण रूप से ध्यान दें तो यह पद सृष्टि की रचना के विषय में सत्यता से परिपूर्ण पद है, और हम देखेंगे कि ये पद बहुत ही साधारण तथा संक्षिप्त शब्दों में सारी सृष्टि की रचना के विषय में हमको पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उत्पत्ति की पुस्तक केवल लगभग 282 शब्दों में हमें पूर्ण सृष्टि की रचना से अवगत करा देती है। केवल 282 शब्द। यहां हम एक बड़ी रुचिकर बात देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप से एक बहुत संक्षिप्त प्रकाशन दिया है। अब यहां एक प्रश्न मस्तिष्क में उठता है कि परमेश्वर के मन में क्या विचार रहा होगा जबकि उसने हमें ये महत्वपूर्ण परिच्छेद अर्थात खंड दिया। लेखक का यहां पर क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या उसका उद्देश्य हमें भूगर्भ शास्त्र पढ़ाने से रहा होगा? यहां हम एक विशेष बात पाते हैं कि इस घटनाक्रम में अनेक तर्क वितर्क तथा मतभेद हमारे समक्ष आते हैं। कुछ समय पूर्व पाश्चात्य देशों में इस बात पर विचार किया गया कि पवित्र बाइबल के इस दृष्टि सिद्धांत को विज्ञान की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए या नहीं, परंतु चिंता और आपत्ति का विषय यह है कि हमारे पास अच्छे व समर्पित मसीही शिक्षक होंगे या नहीं, ऐसे शिक्षक जो उचित ढंग से इसकी शिक्षा दे सकें, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक विषयों का सांसारिक ज्ञान तो पर्याप्त मात्रा में होगा, परंतु परमेश्वर के वचन के आत्मिक ज्ञान से वे वंचित होंगे। हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना के विषय में मनुष्य ने अपनी समझ के अनुसार अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, परंतु उनमें आपस में भारी मतभेद है। लेकिन परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक के 38 अध्याय के चौथे पद में एक प्रश्न करता है। अब वो प्रश्न इस प्रकार से है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली उस समय तू कहां था? अगर तेरे पास समझ है तो बता दे। दूसरे शब्दों में यहां परमेश्वर मनुष्य से यह प्रश्न करता है कि हे मनुष्य, तू सृष्टि की रचना के विषय में अनेकों बातें बोलता तो है, तू अटकलबाजी करता तो है और सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, परंतु तू तो ये भी नहीं जानता कि जिस समय मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी उस समय तू कहां था। मित्रवर, आज सृष्टि की रचना के विषय में हम संसार में अनेक सिद्धांत तथा विचार देखते हैं, परंतु समस्त सिद्धांत दो वर्गों में विभाजित होकर समाप्त हो जाते हैं। प्रथम वर्ग है सृष्टि तथा द्वितीय है कल्पना। हम देखते हैं कि किसी समय में विकास का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही प्रचलित था, लेकिन बहुत समय से इस सिद्धांत को विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया है। अब हमारे पास केवल एक ही सिद्धांत है जो उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पद में दिया गया है, और इसलिए हम इसी सिद्धांत को विश्वास द्वारा स्वीकार कर लें कि परमेश्वर ही ने इस सृष्टि को रचा है, अर्थात परमेश्वर ही सृष्टि करता है। मित्रवर, केवल विश्वास द्वारा ही हम इस गंभीर कथन को स्वीकार कर सकते हैं। नए नियम में इब्रानियों की पत्री का लेखक पत्री के 11वें अध्याय के 1-3 पदों में लिखता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही के द्वारा हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, ये नहीं कि जो कुछ हम देखते हैं वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि एक समस्या फिर भी बनी हुई है, वो ये है कि बिना किसी तत्व के सृष्टि की रचना किस प्रकार हो गई। अब हमारे सामने एक ही मार्ग है, विश्वास या फिर कल्पना। हम जानते हैं कि कल्पना किसी प्रकार भी वैज्ञानिक आधार पर सही सिद्ध नहीं होती, इसलिए अब केवल विश्वास ही सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में हमारी सहायता कर सकता है। मित्रवर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिक प्रमाण ही होना चाहिए। उन लोगों से हमारा प्रश्न ये है कि वे वैज्ञानिक उत्तर बताने का कष्ट करें कि वे किस विज्ञान के विषय में बात करते हैं। सन 1806 में केवल फ्रांस वासियों ने लगभग 80 सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए, परंतु आज हमारे सामने उनमें से एक भी सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई भी मान्यता हमारे युग में नहीं है। प्रिय मित्र, परमेश्वर का भक्त मूसा परमेश्वर द्वारा एक मानवीय माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया, और परमेश्वर ने इस भक्त से उत्पत्ति की पुस्तक को लिखवाया, और ये बात निश्चित है कि मूसा ने इस पुस्तक को कभी भी वैज्ञानिक विचार से नहीं लिखा होगा। मूसा की ऐसी मनसा कभी भी नहीं रही होगी। प्रेरित पौलुस तिमोथियस की दूसरी पत्री के 3 अध्याय के 16-17 पदों में परमेश्वर के वचन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर के वचन को लिखे जाने का उद्देश्य केवल धार्मिकता के विषय में शिक्षा देना है। यह वचन मनुष्य को जीव विज्ञान अथवा भूविज्ञान सिखाने के लिए नहीं लिखा गया है। मित्रों, यह पवित्र वचन वास्तव में केवल परमेश्वर से मनुष्य के संबंध दर्शाने के लिए लिखा गया। दूसरी ओर इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य ये जान ले कि परमेश्वर मनुष्य से क्या क्या आशा अर्थात उपेक्षा करता है, और मनुष्य को वो कौन सा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा उसके पापों से उसका उद्धार हो जाए। अर्थात परमेश्वर मनुष्य को उसके उद्धार का मार्ग दर्शाता है। यही पवित्र बाइबल का उद्देश्य है। यदि आप चाहें तो उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम खंड पर आप लिख सकते हैं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मित्रों, इस पुस्तक में उद्धार का संदेश है। थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि यदि परमेश्वर ने पवित्र बाइबल को वैज्ञानिक रूप दे दिया होता तो प्रभु के दास मूसा के समय के कितने लोग ऐसे थे जो इसे तनिक भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे वैज्ञानिक युग के लोग नहीं थे। और यहां तक कि हमारे युग के भी कितने ऐसे लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाते। यहां हमें एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि पवित्र बाइबल केवल ज्ञानवानों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक देश के तथा प्रत्येक युग के साधारण लोगों के लिए भी लिखी गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सके और उसका लाभ उठा सके। मित्रों, यदि ये पुस्तक वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक भाषा में लिखी जाती तो प्रभु के दास मूसा के युग के लोग निश्चय ही पवित्र बाइबल को अस्वीकार कर देते। यहां हम एक मुख्य बात देखते हैं कि साधारण व्यक्तियों ने परमेश्वर के वचन की सरलता को विश्वास के द्वारा बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लिया, परंतु विद्वानों ने इसका हल खोजने के लिए अनेक विवाद खड़े कर लिए और अपनी अपनी समझ के अनुसार भिन्न भिन्न विचारधारा प्रस्तुत की। उनमें पहला विचार है धोखा या छलावा, परंतु ये विचार कि सृष्टि की उत्पत्ति एक छलावा है सत्यता से बिल्कुल परे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस विचार को भी मान्यता देते हैं। दूसरे विचार के लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी स्वयं ही बिना किसी तत्व के द्वारा उत्पन्न हो गई है। तीसरे प्रकार के लोगों का विचार ये है कि ये पृथ्वी पहले ही से विद्यमान थी, अर्थात ये आदिकाल से उपस्थित थी। ये विचार पवित्र बाइबल के सत्य के कुछ निकट है। और अंतिम तथा चौथा विचार है कि पृथ्वी सृजी गई है, अर्थात पृथ्वी को किसी ने रचा है, और इसी विचार ने ही अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया है जिसके द्वारा मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति का हल खोजने का प्रयास करता है। डॉक्टर अर्थात आचार्य हार्लो शैपले, जो हार्वर्ड वेदशाला अर्थात ग्रह एवं नक्षत्रों आदि का भलीभांति निरीक्षण करने के स्थान के निर्देशक थे, उनका कहना था कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके ज्ञान के विषय में अभी तक हम अंधकार में हैं, अर्थात हमें उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है। आचार्य शार्पले एक महान व्यक्ति हैं जो नक्षत्रों एवं ग्रहों का ज्ञान रखते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम अंधकार में हैं, हम उसका वास्तविक ज्ञान नहीं रखते। अब आपको ध्यान होगा कि कई वर्ष पूर्व मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। वहां से वह चट्टानों के कुछ नमूने अपने साथ लेकर आया था। उन शैलों पर वैज्ञानिक परीक्षण हुए, परंतु विद्वानों ने उन पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि चंद्रमा की उन शैलों के नमूनों ने उनके सारे सिद्धांतों को निरर्थक सिद्ध कर दिया था। लॉरेन एस डिल्लो, ये एक और विद्वान है जिनका कहना है कि मनुष्य कोई जीव नहीं है, मनुष्य कोई जीव नहीं है बल्कि एक पौधा है जिसका विकास भूरे रंग की एक समुद्री घास से हुआ है। और उनका कहना है कि सभी जीव एक प्रकार के परिवर्तित समुद्री पौधे हैं। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज कोई वृक्ष रहे होंगे, और इसका अर्थ यह हुआ कि हम जंगलों में जाकर अपने पूर्वजों को खोजें और प्राचीन से प्राचीन वृक्षों से कहें कि ये हमारे दादा और परदादा हैं। मित्रों, ऐसे सिद्धांत केवल हास्यप्रद कथाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और परमेश्वर का विरोध करना प्रकट करते हैं। मित्रवर, अब हम कुछ क्षण रुककर इस बात पर तनिक विचार करें कि क्या मनुष्य एक छोटे से छोटे सितारे को भी आकाश में गति प्रदान कर सकता है? क्या मनुष्य जंगल के एक वृक्ष की पत्ती की भी रचना कर सकता है? क्या मनुष्य किसी पर्वत को ऊंचा उठा सकता है या सागर की गहराइयां बना सकता है? क्या मनुष्य भोर की एक किरण को भी ऐसे सौंदर्य के साथ जन्म दे सकता है जैसा आप प्रतिभोर देखते हैं? क्या वह संध्या के डूबते हुए सूर्य की रचना कर सकता है? क्या मनुष्य चंद्रमा की कोमल चांदनी को रच सकता है? क्या वह गौरवपूर्ण सूर्य को रच सकता है? क्या वह उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले सुंदर फूलों की रचना कर सकता है? इसका उत्तर केवल नहीं के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किंतु फिर भी मनुष्य उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहता जिसने इन समस्त वस्तुओं की रचना की है। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की है कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचाने और उसके योग्य उसको आदर, सम्मान और स्तुति की भेंट चढ़ाएं। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य ने परमेश्वर के योग्य स्तुति और धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाई, वरन उसने परमेश्वर को झुठला दिया, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य से क्रुद्ध हुआ और उसने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रोमियो की पत्री के प्रथम अध्याय के 18 से कुछ पदों को देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, कैसा बुरा व्यवहार उसने परमेश्वर के साथ किया है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 पद से देखिए, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और न ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों, चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इसका क्या परिणाम हुआ मेरे मित्र, आइए देखें। 24वें पद को देखिए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की वासनाओं की अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि उनके शरीरों का आपस में अनादर हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया और सृष्टि की आराधना और सेवा की, ना कि उस सृष्टिकर्ता की जो सर्वदा धन्य है। आमीन। तो यहां पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की सृष्टि को देखने के पश्चात भी परमेश्वर को अर्थात अपने सृष्टिकर्ता को स्वीकार नहीं किया। उसने ये स्वीकार नहीं किया कि इस सृष्टि को एक परमेश्वर ने बनाया है, परंतु उसने परमेश्वर के योग्य उसको सम्मान और धन्यवाद भी नहीं दिया। इसके विपरीत वो अनर्थ कल्पनाएं करने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके मन की वासनाओं, उसके अशुद्ध विचारों ही में छोड़ दिया। मेरे मित्र, भला यह है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर स्वीकार करें, उसके योग्य उसका आदर और सम्मान दें, सृष्टि की नहीं वरन सृष्टिकर्ता की उपासना करें। यही परमेश्वर का उद्देश्य है और यही परमेश्वर की इच्छा है, तभी हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहला सकते हैं। मेरे प्रिय श्रोता भाई बहन, जितनी बातों का अभी हमने विचार किया है, जिन पर हमने ध्यान किया है, इनको देखने के पश्चात हम बाइबल पवित्र शास्त्र के इस महान गौरवपूर्ण कथन को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। इसलिए आइए हम भी भजनकार दाऊद के साथ भजन संहिता 8 के 3 पद और भजन संहिता 19 के प्रथम पद के अनुसार परमेश्वर के हाथों की कारीगरी को देखें और ये भी देखें कि किस प्रकार आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल किस प्रकार उसकी हस्तकला को दर्शा रहा है, जबकि सृष्टि की अन्य वस्तुएं परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही हैं और आकाश मंडल किस प्रकार उसकी हस्तकला को दर्शा रहा है, तो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि अर्थात मनुष्य, इसको परमेश्वर की महिमा नहीं करनी है क्या? इसको परमेश्वर के कार्यों को नहीं दर्शाना है क्या? इसको परमेश्वर के योग्य स्तुति और धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाना है? मेरे मित्र, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के कार्यों की महिमा करे, अपने सृष्टिकर्ता के कार्यों को दर्शाए और उसके योग्य धन्यवाद और स्तुति की भेंट चढ़ाए। सृष्टि को नहीं, वरन अपने सृष्टिकर्ता को पहचाने और उसी की आराधना करे, उसी की उपासना करे। अभिनय वचनों के साथ हम आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।